जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी, गुरु हैं हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी, वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हे सयाने, पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने, पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की, हम सभी लोग निरंतर एक ही बात पे विचार कर रहे हैं कि आचार्य भगवंतों ने हम पर करुणा करके हमारी दृष्टि की निर्मलता के लिए जो बातें हमें समझाई हैं, उन बातों को हम अपने कैसे जीवन में लाएं और अपनी दृष्टि को निर्मल करें। सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा आठ अंगों से युक्त, तीन मूर्ता और आठ मदों से रहित जो व्यक्ति करता है उसकी दृष्टि निर्मल होती है, ये बात आचार्यों ने हमारे लिए कही है। तत्व का अभ्यास करने से दृष्टि निर्मल होती है, अपने आत्मा के स्वरूप का चिंतन करने से, अपने आत्मा में रुचि लेने से भी दृष्टि निर्मल होती है। या ये कहें कि दृष्टि की निर्मलता ही आत्मरुचि है। और हमने पिछले दिनों ये सब बातें कैसे जीवन में लाई जाए इसके बारे में समझा है। सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा से हमारे भीतर जो जो परिवर्तन आते हैं उन पर भी हमने विचार किया है और अपने भीतर झांक के देखा है कि क्या सचमुच हमारी सच्चे देवगुरु शास्त्र पे श्रद्धा तो है, पर हमारे जीवन में वे सब बातें, वे सब परिवर्तन हुए हैं या नहीं हुए हैं। हमारे मन में अपने आत्मा के स्वरूप या सत्य के स्वरूप के बारे में या जो भगवान ने कहा है उसके बारे में कहीं कोई संदेह तो नहीं उपजता है। जैसे अभी अपन समझ रहे थे कि पुराने लोग समय होने पर अपने पूजा का या कि व्रत नियम के पालन का समय होते ही साथ अर्थ पुरुषार्थ से विमुख होकर के दुकानदारी छोड़ करके अपने धर्म में लग जाते थे। कितनी आकांक्षा नहीं होती थी कि धर्म छोड़ करके अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करते हो। हमें भी इससे ये संदेश लेना चाहिए कि हम अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति धर्म को छोड़ करके नहीं करेंगे, धर्म पूर्वक ही जितना आवश्यक होगा उतना ही हम संसार के चीजों की आकांक्षा करेंगे। ऐसी सब बातें, आठ बातें हमने समझी। हमारे जीवन में जब श्रद्धा आ जाती है तो विवेक भी आ जाता है, आना चाहिए, लेकिन बहुत कम मौके पर ऐसा होता है। श्रद्धा तो आ जाती पर विवेक नहीं आता। विवेक आता है अनुभूति से। जब हम अपने जीवन में उन सब चीजों को अनुभव करने लगते हैं तो स्वयं विवेक आ जाता है। जैसे कि अग्नि जलाती है, सहसा विश्वास नहीं करता छोटा बेटा, तो माँ कहती ठीक है तुम अपना हाथ डाल के देख लो, अपने आप समझ में आ जाए। एक आध बार जब जल जाओगे तो फिर कहेगी कि अब पकड़ो उसको लालटेन को, बहुत तो पकड़ रहे थे अभी कि हम वो पकड़ के देखेंगे, कंडील जलती हुई पकड़ के देखेंगे, तो फिर नहीं पकड़ता एक बार जल जाने के बाद। ऐसा ही जो है, जो हमारे मन में अनुभव धीरे धीरे होने लगता, श्रद्धा के बाद अनुभव होता है। श्रद्धा और अनुभव दोनों में अंतर है। कई लोग इस तरह भी इंटरप्रिटेशन करते हैं कि सम्यक दर्शन के मायने हैं आत्मानुभूति, ऐसा इंटरप्रिटेशन भी करने लगे हैं लोग। लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि श्रद्धा और अनुभूति दोनों कहाँ जाकर के एक मेक होती हैं, इस बात पे हमें विचार कर लेना चाहिए। जैसे ही सम्यक दर्शन होता है वैसे ही आत्मानुभूति होती है। ये अवस्था बनती है जब कोई महामुनि श्रेणी में चढ़ते हैं और सम्यक दर्शन को क्षायक बनाते हैं और चारित्र मोहिनी की उपशमना या क्षपना करते हैं। उस समय ये स्थिति बनती है कि उनका श्रद्धान और उनकी अनुभूति दोनों एक होती हैं, कोई अंतर नहीं होता उसमें। लेकिन उसके नीचे की अवस्था में भी हम अगर और सम्यक दर्शन के साथ अनुभूति मान लेवें तो ये हमारी आगम विरुद्ध चर्चा करना है। हमें हमेशा जो बातें आचार्य भगवंतों ने जैसी कही हैं उन पर हमने श्रद्धान तो कर लिया है, पर वैसे ही समझना भी चाहिए, अपने मन से नहीं समझ लेना चाहिए। ऊंची चीज को नीचे खींच करके और नहीं इंटरप्रेट करना चाहिए। जो चीज जहां जिस गुण स्थान में जाके संभव है वो वहीं संभव होगी, नीचे नहीं संभव हो सकता। तो इस बात पे थोड़ी सी मुझे चर्चा करनी थी कि श्रद्धा और अनुभूति में फर्क होता है। कल भी किसी ने शाम को एक प्रश्न दिया था, उस पर भी शायद इसी तरह विचार किया जा सकता है कि श्रद्धा और अनुभूति दोनों में क्या फर्क है। जैसे भैया, बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ, ये तो मैंने थोड़ी कठिन सी चर्चा कर दी, पर आप घबराना नहीं, बहुत आसान सी चीज है। आचार्य भगवंतों ने हमारे ऊपर बहुत उपकार किया है और कम से कम हमारे आचार्य महाराज ने तो हमको छोटे छोटे उदाहरण से और ये सब चीजें, मैं जो आपको ये सुनाता हूँ तो ऐसा नहीं मानना कि मैं ये सब कहाँ कहाँ से लाता होऊंगा, नहीं, सब गुरु की कृपा से, मेरा अपना उसमें कुछ भी नहीं है, ये मान के चलिएगा, सब सीखा हुआ है धीरे धीरे करके और अभ्यास करने से। आपके जीवन में भी आ सकता है, मैं कोई कहीं से ये सब चीजें अपने पुरुषार्थ से अर्जित करके नहीं लाया हूं, उसमें से अधिकांश तो गुरु की कृपा से है। आप भी जो है गुरुओं की कृपा से और अपने थोड़े से पुरुषार्थ से ये सब चीजें प्राप्त कर सकते हैं, मैं आपको ये विश्वास दिला रहा हूं इस चीज के साथ में। आप ऐसा नहीं मानना कि ये सब चीजें तो सब सुनने और कहने की हैं, ये जीवन में आती नहीं है, ये सबके जीवन में आ सकती है। तो श्रद्धा और अनुभूति में क्या अंतर है? तो कहते जैसे अपन चले जा रहे हैं रास्ते से और बहुत प्यास लगी, अब कहीं पानी दिख नहीं रहा और क्या करें, एक कदम चलना भी मुश्किल है, इतनी अधिक वेदना हो रही है पानी की। अब अचानक देखते हैं कि वहां से कुछ लोग चले आ रहे हैं और इतने ही नहीं, उनके सिर पर घड़े भी हैं। इसका मतलब है कि कहीं आगे पानी अवश्य है और ज्यादा दूर नहीं है। जब ये सिर पे घड़े लेके आ रहे हैं तो मुश्किल से एक किलोमीटर, आधा किलोमीटर, इससे ज्यादा नहीं होगा। और जब वो निकट आते हैं तो इनको बहुत प्यासा देख करके और पूछते हैं कि भाई क्या बात है, उनको बहुत प्यास लगी है। अरे बिल्कुल पास में ही 50 कदम पर तो पानी पानी भरा हुआ है, उधर बढ़िया बावड़ी बनी हुई है, आप चले जाइएगा। बड़े प्रसन्न होते हैं, इतनी प्यास लगने के बाद भी प्रसन्नता किस बात की, अब तो 50 ही कदम पर पानी है, अब श्रद्धान हो गया, क्योंकि पानी खुद लेकर के आने वाला कह रहा है कि 50 कदम पर पानी है। अब मुझे अविश्वास की तो बात ही नहीं होती, अब तो मुझे उस व्यक्ति पर भी विश्वास है और आगे पानी है इस बात पे विश्वास है। और जैसे ही ऐसा विश्वास होता है वैसे ही कितना आनंद आने लगता है, ऐसा जैसे कि मानो पानी मिल गया। मिल गया क्या भैया, बुझ गई क्या प्यास? अरे अगर इसी को आप अनुभूति मानना चाहो तो मान लो, बस इतना ही होता है श्रद्धान में कि मानो जैसे मिल गया हो। प्रादुर्भूत देखिए, एक शब्द आ गया लेकिन बाकी का चला गया, अर्थ बताए देता हूं। वादिराज महाराज भक्ति करते हुए कह रहे हैं भगवान की कि हे भगवान, जब मैं आपके सम्मुख आकर के और आपके स्वरूप को देखता हूं तो मुझे लगता है कि ऐसा ही स्वरूप तो मेरा भी है। और मुझे तो ऐसा लगने लगता है कि मैं आपके जैसा ही हूं, लेकिन मिथ्यै वेयम् तदपि तनुते तृप्तिमभ्रेश रूपां दोषात्मानोपविमत फलास्तत् प्रसादात् भवन्ति। लेकिन ये मेरा विचार एकदम मिथ्या है, झूठा है। लगता है कि मैं आपके जैसा हूं, पर अभी नहीं हूं आपके जैसा। आपके जैसा बनने की सामर्थ भले ही मेरे भीतर है, और आपको देख करके मुझे उस अपनी सामर्थ पर भरोसा हो गया है। और भरोसा क्या, मुझे तो वो प्राप्त हो गई, ऐसा ऐसा मुझे एहसास हो रहा है। पर ये जो एहसास है ये झूठा है, मिथ्यै वेयम् तदपि तनुते तृप्तिमभ्रेश रूपां। लेकिन ऐसा विचार आने पर मन को बड़ा संतोष और मन को बड़ी तृप्ति मिलती है। सो ठीक ही है भगवान, आपके चरणों में आकर अपने स्वरूप को पहचान कर पतित से पतित आत्मा भी पावन हो जाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ऐसा कह रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। वैसा ही श्रद्धान होने पर हमें लगने लगता है कि मानो हमारा अपना जो स्वरूप है वो हमको प्राप्त हो गया, पर स्वरूप की झलक अभी हमें मिली नहीं है भैया। अभी उसकी राग द्वेष से रहित जो आत्मा की अवस्था है उसकी अनुभूति नहीं हुई है। मात्र विश्वास हुआ है कि मेरा स्वभाव ऐसा है। और जैसे कि उस पानी कि प्यासे व्यक्ति को पानी की बात सुन करके और ऐसी तृप्ति हो गई जैसे पी लिया हो। तृप्ति कब होगी, जब 50 कदम आगे जा करके और 50 कदम आगे जा करके और विश्वास में दृढ़ता आ गई, क्योंकि बाहुली सामने है। लेकिन अभी भी प्यास तो ज्यों की त्यों है। हाँ, जब जो है झुकेगा, अंजलि भरेगा, फिर पिएगा, पेट में जब पानी जाएगा तब तृप्ति होगी। कौमोई में धरो रे में तब तक नहीं होगी तृप्ति, जी ध्यान रखना। हाँ, जब तक नीचे नहीं जाएगा। सच्चे देवगुरु शास्त्र का सानिध्य मिलने पर श्रद्धान होता है, इसके बाद झुकना पड़ता है। और अपनी जितनी अंजलि है भावों की उतनी भर करके जब आप पिएंगे, अर्थात उनके द्वारा कहे गए ज्ञान और आचरण का वैसा ही पालन करना शुरू करेंगे, और जब छठे सातवें उन स्थान में पहुंचकर अप्रमत्त अवस्था में, और साथ ही शायद हम अप्रमत्त अवस्था में पहुंच करके श्रेणी के सम्मुख होकर के, और जब अपने दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी की उपशामना या क्षपना करेंगे, तब जाकर के आपके श्रद्धान और अनुभूति में एक रूपता होगी। अभी उसके नीचे तो हो ही नहीं सकती है, अभी तो श्रद्धान ही किया जा सकता। अभी तो दृष्टि निर्मल हुई है, लेकिन दृष्टि निर्मल होने के बाद अपने जीवन को उसकी मलिनताओं को दूर करना भी आवश्यक है। वो हम अब उसकी प्रक्रिया धीरे धीरे करेंगे। हम अविवेक को हटा चुके हैं, हम 8 अंगों को प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन अभी एक और चीज बहुत मुश्किल वाली रह गई जो श्रद्धान को बहुत जल्दी तोड़ देती है, 8 मद। अहंकार ऐसी चीज है जो श्रद्धान होने के बाद भी कि ऐसा लगने लगा कि जैसे मगर मुझे तो सब कुछ प्राप्त हो गया, ऐसा भाव अगर आ गया, चाहे वो ज्ञान का हो, ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बल वृद्धिम तपो वपु वस्टा वाशित्वमानित्वम विस्मय माहुर गतस्मया। जिन्होंने अहंकार से पार अपने जीवन को कर लिया गतस्मया, वे कह रहे हैं तीर्थंकर भगवान कि 8 प्रकार के मद से सावधान रहना। श्रद्धान होने के बीच, अनुभूति और श्रद्धान के बीच में अगर मद आ जाएंगे तो श्रद्धान भी टूट जाएगा, अनुभूति तो आत्मा की होने वाली नहीं। जिसके भीतर अहंकार है उसका श्रद्धान भी मलिन होता चला जाता और अनुभूति तो हो ही नहीं पाती। और हमें करना है उस शुद्ध आत्मा की अनुभूति, जिसके लिए हम इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, इतने दिन से हम अपनी दृष्टि निर्मल बना रहे हैं। और अब ऐसा ना हो कि दृष्टि निर्मल होने के बाद भी और अहंकार आ जावे। दृष्टि की निर्मलता का भी अहंकार मत कर बैठना कि मेरी दृष्टि कितनी निर्मल है, मेरा 7 तत्व का अभ्यास कितना चोखा है। हाँ मुझे कितनी बातें आती हैं ज्ञान की, ऐसा अहंकार कर लिया। बहुत 8 प्रकार तो कहे गए हैं अहंकार के, वैसे तो जितने जीव हैं उतने प्रकार का अहंकार है, पर मोटा मोटा हिसाब बता दिया कि इन्हीं सब के अंतर्गत आ जाएंगे 8 बातों के अंतर्गत। अहंकार, अभिमान, स्वाभिमान और निरहंकार, ये 4 अवस्थाएं हैं हमारे अंदर। चारों में से कौन कौन सी अपन को उपलब्ध हैं जरा विचार कर लें इस चीज का। अहंकार किसे कहते? अपनी योग्यता से अधिक सम्मान की आकांक्षा रखना अहंकार कहलाता है। नोट कर लो, अपनी जितनी योग्यता नहीं है उससे ज्यादा सम्मान की आकांक्षा रखना जगह जगह, यही तो कहलाता अहंकार। योग्यता है नहीं और मुझे सम्मान मिले, तो कहते ये अहंकार छोड़ देना चाहिए। योग्यता जितनी है उतने सम्मान की आकांक्षा होना, ये अभिमान कहलाता। जरा रिफाइन हो गया, अहंकार से थोड़ा रिफाइन है। हम योग्य हैं इसलिए हमें सम्मान मिलना चाहिए, अयोग्य हैं तब सम्मान मिलना चाहिए, ये अहंकार। हम योग्य हैं, योग्यता का सम्मान होना चाहिए, ये अभिमान है, ये भी अभिमान है, ध्यान रखना। और मुझे अपनी योग्यता के सम्मान की आकांक्षा तो नहीं है, लेकिन मैं अपमान भी नहीं सहन कर सकूंगा, ये मेरा स्वाभिमान है। बताइए, हाँ, मुझे अपनी योग्यता के सम्मान की कोई आकांक्षा नहीं है, लेकिन आप अपमान करेंगे, ये भी अभी मैं इसको नहीं जीत पाया हूं, तो ये मेरा स्वाभिमान है। और निराभिमान या निरहंकार क्या कहलाता है? आप चाहे अपमान करो चाहे सम्मान, हमने सम्मान की आकांक्षा करी होती और सम्मान नहीं मिलते तो अपमान महसूस करते, हमने सम्मान ही नहीं चाहा, और अपमान करो सो हम आपका करो आप अपमान। अब हम अपमान और सम्मान दोनों से पार हो गए, तब समझना निराभिमान। सम्यक दृष्टि जिसकी निर्मल दृष्टि हो जाती है वो अभिमान और अहंकार तो छोड़ चुकता है, स्वाभिमान और निराभिमान के बीच झूलता रहता है। बस क्षण भर में निराभिमान, क्षण भर में थोड़ा सा अपने पद का स्वाभिमान तो रखेगा, वो उसकी गरिमा तो बनाए रखेगा, फिर वो अभिमान नहीं कहलाता, वो गरिमा कहलाती, वो गौरव कहलाता है, वो गर्व नहीं कहलाता, वो मद नहीं कहलाता, वो घमंड नहीं कहलाता। इतना इतना अपने को दृष्टि को रिफाइन करना पड़ेगा, ये प्रयास करने से हो जाएगा। कोई ऐसा नहीं समझिएगा कि कोई बातें बहुत, मैं पहले ही कह चुका आपसे कि बहुत बड़ी वाली बातें करने का मेरा मन नहीं रहता, जो अपन कर सकते हैं वो करो ना। अपन इतना तो अपन आसानी से कर सकते हैं, आ जाता है अपनी योग्यता से ज्यादा सम्मान की आकांक्षा हो जाती, फौरन संभाल लो कि क्या करना अपने को, अपन वो योग्य नहीं है तो नहीं मिलो सम्मान, जो नहीं मिलो। और जब योग्यता का सम्मान नहीं हो गए, भैया तोते से तनक भर कालू अपने आप को कि हम योग्य भी हैं फिर भी सम्मान नहीं करते, अभी हम इतना सहन नहीं कर सकते, तो थोड़े दूर रहो तैसे, ताकि अपने भीतर अहंकार ना आ जाए। कम से कम अभिमान तो फिर भी अहंकार से ठीक है कि इतनी योग्यता हासिल करी और कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है। बहुत मुश्किल है कि योग्यता का रिस्पॉन्स ना मिले फिर भी हम चुप रहे, हाँ ये भी कठिन है, ये साधना है, ये जिंदगी भर लग जाए को नहीं तो योग्यता का सम्मान नहीं मिले तो सबरी योग्यता धरी रह जाए। मन में ऐसा लगन लगत के का काम को हम, जो सबका जो डिग्री हम इतनी बड़ी लाए हैं और कोई पूजा तक नहीं है, हाँ नहीं लगने लगता हम बहुत बढ़िया बात कहें और आप सुनो नहीं तो कैसा लगे, रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा, रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा तो बहुत मुश्किल होती है। वो इसके आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन अभिमान छोड़ने के लिए कोई रिस्पॉन्स की आवश्यकता नहीं। हमने भला किया अपना कल्याण करने के लिए, हमने ज्ञान हासिल किया अपना कल्याण करने के लिए, आप मेरे ज्ञान से प्रभावित नहीं होते, नो नहीं हो। अब मैंने उपवास किया था अपने अपने निर्मल परिणाम करने के लिए, मैंने कर्मों की निद्रा के लिए, आपने पूछी नहीं, आपने हमें सम्मान ही नहीं दिया कि आपने उपवास किया, हाँ ऐसा धीरे धीरे करके सीखना पड़ेगा, तब जाके हम स्वाभिमान तक और निराभिमान तक पहुंच जा पाएंगे। दृष्टि की निर्मलता होने से ये बातें सहज हो जाती हैं, ये ध्यान रखना, बहुत कठिन नहीं है। ये बातें अगर हमारे भीतर अभी नहीं आई हैं तो समझना अभी दृष्टि को और निर्मल बनाना पड़ेगा। अभी हमारे कर्म बैठे हुए हैं जो कि दृष्टि को निर्मल नहीं बनने दे रहे हैं, उन कर्मों को हटाना पड़ेगा, मिथ्यात्व को हटाना पड़ेगा। अनंतानुबंधी कषाय को हटाना पड़ेगा, जो भीतर प्रोसीजर है वो ऐसे ही होगा, बाहर से हम कुछ प्रोसीजर करेंगे तो भीतर भी हड़बड़ाहट मचेगी और वो कर्म हटेंगे, और जैसे ही भीतर के कर्म हट जाएंगे अपने आप आपको बाहर दिखने में आने लगेगा कि हाँ अब तो ठीक, बहुत आसान हो गया, अब तो ज्यादा इच्छा ही नहीं होती है। ज्ञान का अभिमान सबसे पहले नंबर रखा है, बाकी सब बाद में रखें, सबसे खतरनाक है अगर तो यही। हम तो छेदाला की जी लाइने जब बोलते हैं कि ज्ञान समान ने आन जगत में सुख को कारण, सो सुख की जगह दुख लगा दी तुम। ज्ञान समान ने आन जगत में दुख को कारण, कौन सो ज्ञान? खोटा ज्ञान। हाँ ये ध्यान रखना, सम्यक ज्ञान होगा तो सुख को कारण है, लेकिन आज सम्यक ज्ञान तो कमती है और मिथ्या ज्ञान बहुत है। इसी ज्ञान का अहंकार व्यक्ति को कितना है, हम देखते हैं कि इतने पढ़े लिखे लोग भी और ऐसी कषाय करते हैं, ऐसा भाव करते हैं कि शर्म आने लगती है। हाँ इतनी आसक्ति प्रकट होती है जीवन में पढ़े लिखे होने पर, इतना कषायवान व्यक्ति दिखाई पड़ता है तो लगता है कि ये ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। इतना इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी परिणामों में निर्मलता नहीं आई, इसका मतलब है कि ज्ञान मिथ्या है, ज्ञान की कसौटी है ये। कषायें मंद होनी चाहिए, प्राणी मात्र से प्रीति होनी चाहिए और अपने आत्मा का स्वरूप बार बार विचार में आना चाहिए, ये ज्ञान की कसौटी। ऐसा ज्ञान प्राप्त हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन कौन सा ज्ञान? मिथ्या ज्ञान, और वो भी थोड़ा ज्यादा हो जाता है और उसका अहंकार कर बैठे। अहंकार में थोड़ा सा अपन समझ लें इस चीज को कि अपने पास बहुत सारा ज्ञान है, इससे कछु हर्जा नहीं है, लेकिन जो देख लो हमारे पास इतो हो तुम तो धरे गुद्दू, ये मैं हर्जा है और कछु नहीं। अब समझिए आप, अपने ज्ञान के चलते दूसरे को अज्ञानी साबित करने का जो भाव है वो खोटा है। अपना ज्ञान हो जावे सो कछु खोट नहीं है। आप समझे कि नहीं समझे? मैं अपने ज्ञान को हासिल करूं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ज्ञान हासिल मत करो, नहीं, खूब ज्ञान हासिल करो, लेकिन इसलिए हासिल न करो कि दूसरे को अज्ञानी साबित कर सके, चार दिनों के बीच में पंडित बन के बैठ सके। एक होने हासिल करो, विद्वत्ता के लिए ज्ञान हासिल नहीं करना है, ज्ञान मेरे कल्याण और दूसरे के कल्याण, स्वपर कल्याण के लिए मुझे ज्ञान हासिल करना है। अगर स्वपर कल्याण के लिए ज्ञान हासिल करूंगा तो अहंकार नहीं आ सकता, और अगर सिर्फ इसलिए ज्ञान हासिल किया है कि चार दिनों के बीच में पंडित बन जाए, विद्वान कहां है कि अरे भैया बड़ो ज्ञान है इनको, तो महाराज तो बहुत पढ़े लिखे हैं, इसके लिए अगर मैं ज्ञान हासिल करूं तो खोटा है ज्ञान, ध्यान रखना, मेरे भी काम का नहीं है, ये कह रहे हैं वहां। देखो ज्ञान तो छयोपसम ज्ञान है, इसका क्या अहंकार करना। जरा जरा में तो आप देख रहे हो कि जरा सी बात बिसरती है तो पूरी बिसर जाती, नहीं बिसरती, कितने ही अभ्यास किया हो लेकिन जरा से में जो है ज्ञान पे आवरण आने में देर नहीं लगती, जरा से परिणाम आपके बिगड़े और ज्ञान बिगड़ गया। ज्ञान तो जितनी निर्मलता होगी उतना आएगा। हाँ आज अपन वर्तमान में बच्चों को कि और पढ़ो और पढ़ो, संकलेश करने से ज्ञान कभी नहीं बढ़ता, ध्यान रखना, विशुद्धि बढ़ने से ज्ञान हासिल, और छयोपसम ज्ञान है। आप इतने एमए नहीं पीएचडी करके और अगर मरण प्राप्त करके और कहूं दूसरी बार पैदा हो सो एमए पढ़े पढ़ाए पैदा नहीं हुई हो, आ अनार को फिर से सीखने पर सब रोका चलोगे वो। हाँ ये है छयोपसम ज्ञान, इतने कितने भी आप पढ़ लो और फिर बाद में दूसरी जगह जन्म लो, एक पैदा होते ही साथ आप एमए पढ़े दे कहा आपको वो सीखने पर दे, ऐसा तो छयोपसम ज्ञान है, छूट जाता। देश बदलने से भाव बदलने से जो छूट जावे, अरे ऐसा ज्ञान प्राप्त करो, छाए ज्ञान जो एक बार प्राप्त होने के बाद छूटता नहीं है। गौरव होना चाहिए तो केवल ज्ञान मेरा स्वभाव है, इसका गौरव होना चाहिए, ये छयोपसम ज्ञान में क्या धरा हुआ है, ऐसा विचार आना चाहिए। बस इतना ही है। हमने देखा जिनेन बढ़नी जी थे तो उनकी संलेखना हुई हमारे सामने ही हुई तीसरी में, और उसके पहले भी वो आचार्य श्री के सानिध्य में रहे, तो सन 80 की वाचना की बात है, और बड़े बड़े विद्वान आए थे सब तरफ से और धवला की वाचना हो रही, पूरा संघ बैठा है, आचार्य महाराज बैठे, विद्वान बैठे और एक संजद शब्द पे और बात छिड़ गई। आधे घंटे हो गया, कुछ क्लियर नहीं हो रहा कि क्या अर्थ इसका लेना चाहिए। अब किसी को नहीं समझ में आ रही। अचानक जो है और एक पंडित जी को याद आया कि वर्णी जी तो बैठे हैं, जिनेंद्र वर्णी तो वे हैं जिन्होंने 17 साल तक जो है और अध्ययन चिंतन मनन करके और जैनेंद्र सिद्धांत कोश में 6,000 शब्दों को डिफाइन किया है, 4 वॉल्यूम है। अबे कई जने तो वो देख कर नहीं जानत कि कैसे देखो जात कहां निकल है वो जो शब्द। हाँ ढूंढ बनी आऊ तब और उनने जो है 6,000 शब्दों को इस तरह से सारे 150 ग्रंथों में से उनके डिक्शनरी बनाई। बताइए डिक्शनरी बनाना आसान चीज नहीं। इंजीनियर थे वो, सर्विस भी की, फिर उसके बाद जो है चुल्लक बन गए। तो जिनेंद्र वर्णी बैठे हैं, अरे इनको तो शब्दों की बिल्कुल राई रत्ती मालूम किस ग्रंथ में इस शब्द का क्या अर्थ है। अरे वर्णी जी आप बताओ, आप क्यों नहीं बता रहे। तो हाथ जोड़ के कहते कि आचार्य श्री की आज्ञा हो तो कहूं। अरे आपको मालूम है फिर भी नहीं बता रहे। कहते इतने बड़े विद्वान और इतने बड़े आचार्य भगवंतों के सामने मैं अपनी तरफ से क्या कहूं, आप पूछेंगे तो बताऊंगा। पूछा गया और फौरन 2 मिनट तो लगना थे उनको कि इस ग्रंथ में इसका अर्थ ये, इस ग्रंथ में ये, इस ग्रंथ में ये, 5-6 ग्रंथों के उद्धरण देकर के उनने उसका अर्थ समझा दिया। सब चकित रह गए और सबके मन में एक ही बात आ रही थी कि जब इनको मालूम हती तो चुप काए हते, लेकिन वो ये कह रहे थे कि मेरा ज्ञान इसलिए नहीं हासिल किया है कि दूसरे को अज्ञानी साबित करूं, आपको स्वयं लगे कि मुझे मालूम है तो मैं बता दूंगा, अपने ज्ञान का अहंकार क्या करूं मैं। बताइएगा अधजल गगरी छलकत जाए, अगर और को हो तो चिमाने सकत तो आध घंटा कहते कि सबरे बुद्धू हो तुम्हारे, हम बता रहे हैं सो है फौरन। और वो चुप, बहुत पेशेंस चाहिए, मालूम है लेकिन चुप है। ये है कि ज्ञान अगर प्राप्त हो तो ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जिससे कि अपना और दूसरे का हम कल्याण कर सकें, दूसरे को अज्ञानी और अपने को ज्ञानी साबित करने की चेष्टा जिस ज्ञान से हो वो तो सब अहंकार। और इसमें क्या होता, दूसरे के तिरस्कार का ही भाव रहता है। अहंकार में हमेशा दूसरे के तिरस्कार का भाव रहता है, अपने छोटी छोटी उपलब्धियों से दूसरे का तिरस्कार करने का भाव। ये सम्यक दर्शन को मलिन बनाने वाली। ज्ञानम पूजाम, भैया कंचन कामनी छोड़ वो सरल है, घर गृहस्थी छोड़ वो सरल है, लेकिन ख्याति पूजा लाभ की भावना छोड़ वो बहुत कठिन है। हाँ ये ध्यान रखना। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कह दिया कि सब तो करो तुमने, लेकिन ये पूजा की आकांक्षा नहीं छूटी अभी। तो कहते ये अहंकार की, देखा मेरी कितनी ख्याति है, मेरा कितना, मेरी प्रसिद्धि है, अरे सब जानते हैं मुझे, तुम नहीं जानते। ऐसा भाव नहीं लाना, ऐसा भाव आने से ये अहंकार हमारा ही घाटा करेगा। पूजाम कुलम जातिम, अरे तुम्हें नहीं मालूम हमारी माँ का कुल, हमारे पिता की जाति कितनी ऊंची रही है, राजा महाराजाओं के यहां पर रहे हैं वो है? और तुम ये नहीं जानते। ऐसा अपने कुल और जाति का अभिमान नहीं करना। कितने हो गए, 4 हो गए। ज्ञानम पूजाम कुलम, अगर कुल का अभिमान करना है तो कौन सा करना। मैं इक्ष्वाकु वंश का हूं, मैं तीर्थंकरों की परंपरा का हूं, छोटा मोटा आदमी नहीं हूं। ऐसा करना गौरव है ये तो कि मैं इक्ष्वाकु वंश का हूं, मैं उत्तराधिकारी हूं ऋषभ देव का, मैं भगवान महावीर स्वामी की परंपरा का हूं, ऐसा गौरव करना अलग बात है। लेकिन ये छोटे छोटे से जन्म मरण के, जो शरीर के जन्म और शरीर की उत्पत्ति से जुड़े हुए कुल और जाति हैं, उनका अहंकार या अभिमान करने की आवश्यकता नहीं है। पूजा अगर वास्तव में होती है तो केवल ज्ञान की प्राप्ति पर ही होती है, उसको मुझे प्राप्त करना। ये छोटी मोटी ख्याति, छोटी मोटी पूजा से, छोटी मोटी प्रतिष्ठा से, क्या प्रतिष्ठा लेंगे तो वो ही लेंगे, फिर केवल ज्ञान वाली चीज लेंगे, छोटे मोटे में कैसे मानने वाले हैं, अपन नहीं मानते। ऐसा विचार आ जाना चाहिए। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बल वृद्धिम तपो वपु, बल अपने शरीर का बल, आत्मा के अनंत बल पर विश्वास जिसका है, वो शरीर के थोड़े मोरे बल का कोई विचार नहीं करेगा। लेकिन कई लोगों को वरिष्ठ शरीर मिल जाता है तो उसी का अहंकार कर लेते। हम हमेशा ये बात सुनाते हैं, 83 की बात है, उस समय आचार्य श्री के पास जब बैठे रहते थे तो अक्सर आचार्य श्री बाद में जब सब चले जाते थे अकेले में, और मालूम कुछ इस तरह की बातें कह देते थे, बड़ी बड़ी याद रखने की बातें। उनके सामने बहुत लोग दर्शन करने आते, नमोस्तु करके चले जाते। उसमें कोई बहुत बढ़िया शरीर वाले, अच्छे बलवान शरीर है, उनका सब अच्छा है, तो जब वो चले जाते तो आचार्य श्री धीरे से कहते कि देखो, अगर जे छुल्लक बन जाते, जे मुनि बन जाते, तो कितनी धर्म की प्रभावना होती। अब तुम्हारा शरीर तुम्हें कमजोर मिला हो, भावना तुम्हारी इतनी होती है आगे बढ़ने की, और जे इनको इतना अच्छा शरीर मिला हो, जे अपना कल्याण नहीं करते। ये बात सुनकर के ऐसा लगता था कि देखो, जिस व्यक्ति को शरीर का बल मिला है उसका अभिमान तो कर रहा है, लेकिन उस शरीर से धर्म ध्यान नहीं कर रहा। जो शरीर का बल मिले तो अहंकार नहीं करना, बल्कि उस शरीर के बल से, और जैसे शांति सागर जी महाराज अपने बलिष्ठ शरीर के माध्यम से उपवास इत्यादि करते थे, और इतने नहीं, वेद गंगा दूध गंगा दोनों नदियों को जो है दो दो महाराज को कंधे पर दोनों तरफ बिठा करके पार कर जाते। हाँ, अभी आएगा 20 तारीख को, अगस्त को, शांति सागर जी महाराज की समाधि के समय, तब आपको बहुत सारी चीजें, जितना समय अभी बीच बीच में सुनाते जा रहे हैं, कोई बात नहीं है, बहुत से उनके जीवन कभी पढ़िएगा आचार्य चक्रवर्ती में, कि कितनी उनकी बल था उनके अंदर, लेकिन उस बल का क्या किया उन्होंने। अपन क्या करते हैं, अपन तो बल का दुरुपयोग करते हैं, उन्होंने सदुपयोग किया। अहंकार वश जो है दुरुपयोग नहीं करना, दूसरे का तिरस्कार भी बल इसलिए नहीं मिला कि दूसरे को सताओ। हाँ, तो कहते बल का अहंकार नहीं करना, ऐसा आत्मबल प्राप्त करना जिसका कि गौरव कर सको। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलम वृद्धि वृद्धि, वृद्धियां प्राप्त तो आज होती नहीं है। कई लोग प्रयास करके सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, देवी खोटी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। आज पंचम काल है भैया, बड़े देवी देवता तो आपके आएंगे नहीं पुण्य के उदय से, आते भी तो छोटे मोटे जो है मिथ्या दृष्टि देवी देवता वे सिद्धपन कर लेते हैं, वे भी उन पे दबाव डाल करके किसी मंत्र के उससे, और उसी पे अहंकार कर लेते कि देखो हमारी कितनी शक्ति, हमारी कितनी रिद्धि हमें प्राप्त हो गई। या फिर दूसरे प्रकार की रिद्धि है, घोड़ा की जगह पर अब पहले हाथी घोड़ा होते थे, अब मोटरें हैं, स्कूटरें हैं और मकान है, जय रिद्धि है श्रावकों की, तो जय रिद्धि है, और कहां से जाएंगे और रिद्धि। तो कहते इसका भी अभिमान नहीं करना, साधु हो तो रस रिद्धि सात गारव, रस गारव रिद्धि गारव, इनका अहंकार नहीं करना, और श्रावक हो तो अपने धन पैसे और ये बाह्य वैभव का अहंकार नहीं करना, रिद्धि और तप और रूप। तपस्या बहुत करते हैं तो भी अहंकार आ जाता है, नहीं कहते नहीं तपस्या करके भी अहंकार, तपस्या तो इसलिए की थी अहंकार घट जावे, लेकिन अहंकार तपस्या का ही आ जाए तो तब तो फिर कोई बात ही नहीं है, तब तो कहाँ जाओगे फिर। और रूप अगर थोड़ा सुंदर रूप मिल जाता है तो भैया अहंकार आ जाता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, कहते नहीं, एयत्य निच्छय कदो समूह सवत्त सुंदरो लोगे बंद कहा एयत्य तीन विसंवादनी होदी। इस संसार में सबसे सुंदर अगर कोई है तो एकत्व विभक्त अपनी आत्मा ही है, एकत्व अर्थात सब पर पदार्थों से मुक्त, और यह आत्मा का स्वरूप ही सबसे सुंदर है, और बाकी सब चीजें, ये शरीर का सौंदर्य तो 4 दिन का है, उसके बाद जो है ये नष्ट हो जाता है। अगर रूप का अभिमान करना है तो अपने आत्म स्वरूप का करें हम, और अगर अगर तपस्या का अभिमान करना है तो केवल ज्ञान की प्राप्ति में जो तपस्या शुक्ल ध्यान है उसका गौरव करें अपन। इस तरह अपन 8 मदों को आसानी से जीत सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन पुरुषार्थ की भी तो आवश्यकता है, और साथ में श्रद्धान पूर्वक पुरुषार्थ किया जाए तो ही संभव है भैया। और विशेष जो है कोई उदाहरण मुझे याद नहीं आता, अपने जीवन का एक उदाहरण याद आता है वो ही सुनाए देता हूँ, फिर उसके बाद अपन आज का समय भी हो गया। सतना की बात है, अहंकार खोटी चीज है, मैं हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं, और कितनी जल्दी आ जाता है ये भी हम बता देना चाह रहे हैं आपको। अपने जीवन में ये चीज हम देख चुके हैं, ये प्रश्नोत्तर होते ना शाम को, वहां पर जो है आहार के बाद होते थे प्रश्नोत्तर, और संडे का दिन था और इतने ही समझ लो, इतने ही जितने लोग अभी बैठे हैं इतने ही लोग बैठे हैं, प्रश्नोत्तर चल रहे हैं, और हाथ में इतना इतने कागजों का बंडल है, एक के बाद एक फटाफट जो है जवाब देते चले जाना है और देते चले जा रहा हूं। उस समय तो आचार्य श्री को याद करके बैठता हूं, जवाब मैं नहीं देता हूं, मुझे ये मालूम कि कोई और है जो जवाब देता है, मैं तो सिर्फ मीडिया बनता हूं, जवाब मैं नहीं देता हूं। और मैं देते चले जा रहा हूं, और उतने में किसी ने जो है उन्हीं प्रश्नों के बीच में एक और कागज रख दिया, वो मेरे ध्यान में आ गया, और उस कागज में लिखा था कि अद्भुत है आपका ज्ञान, लग रहा है जैसे सरस्वती जिह्वा पर बैठी है और आप बिल्कुल प्ररूपण करते जा रहे हैं, अलग अलग टॉपिक पे आप बड़े आराम से बात करते जा रहे हैं। एक क्षण को लगा मुझे भी कि हां मेरे पास ऐसा है सामर्थ्य, एक क्षण को आप कहेंगे और उसके बाद के प्रश्नों के उत्तर पर जैसे कि आवरण आ गया, एक मिनट लग गया मुझे एक प्रश्न के लिए, एक मिनट बहुत होता है, नहीं तो 10 सेकंड में उत्तर जो है पर्याप्त होता 10 सेकंड, लेकिन एक मिनट तक मुझे उसका उत्तर नहीं सूझ रहा है, उतने देर में मुझे यह भी ध्यान आ गया कि अरे ये व्यर्थ है मेरा अहंकार कि मैं और जवाब दे रहा हूं। फौरन आचार्य श्री की स्मृति आ गई और उसके बाद मानो जैसे आवरण हट गया और फिर प्रश्नों के जवाब ज्यों के त्यों होने लगे। मैंने पूरे प्रश्नों के जवाब के बाद उनको वहीं के वहीं ये घटना सुना दी कि ये है अहंकार का काम, ज्ञान पर पर्दा डाल देता है, मेरे अभी देखते देखते ही ज्यादा देरी की बात नहीं। भैया और आपसे क्या विशेष मैं कहूं, इस अहंकार को जीतना चाहिए, जिससे जैसे बने, जितनी जल्दी बने उतनी जल्दी, पर अभ्यास करने से ही जीता जा सकता, नहीं तो दृष्टि की निर्मलता को प्राप्त करने के बाद भी हमारी दृष्टि मलिन होने में देर नहीं लगेगी। अहंकार करके इसमय न्यून अन्यान त्येति धर्म स्थान गर्विता सया सोत्येति धर्मात्मीयम न धर्मो धार्मिक बिना, जो अहंकार वश अपने धर्मात्मा का तिरस्कार करता है, दूसरे जीव का तिरस्कार करता है, मानो वो अपने ही धर्म का तिरस्कार करता है, क्योंकि धर्म बिना धर्मात्मा के रह नहीं सकता। आपने धर्मात्मा का तिरस्कार किया, इसका मतलब आपने अपने आत्म धर्म का ही तिरस्कार कर दिया है। इस अहंकार से बहुत बचना चाहिए। फिर बैठेंगे, फिर बात करेंगे, पर आज अपन ने इतना सीखा कि हमको धीरे धीरे अहंकार को जीतने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, जिससे दृष्टि निर्मल हो, जीवन अच्छा बने। इसी भावना से बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर में,
गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यज्ञ स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है। अथवावग शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक होता हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो, समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में, बंधन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलियां, बोली हो जगत को लेनी के अविनश्वर मणिया शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरु वर प्रणाम मिथ्या तमना स्वे को ज्ञान के प्रकाश वे को ज्ञान वे को मंद विधान वे को सो पर पिछान वे को परम प्रमाणी है अनुभव बताए वे को जीवों के जताए वे को करुणा सताए वे को भव्य और आनी है जहां तहां तार वे को पार के उतार वे को सुख वे स्तार वे को यही जिन वाणी वाणी के ज्ञान के सूर्य लोकालो सुवाणी मस्तक नमो सदा दे तुमोनो ये दिन वाणी भारती तोहे जपो दिन रैन जो तेरो शरणा गगे सो पावे सुख चैन उदक मंगल दान रवा कुले दिन ग्रहे मुनिनाथ
सब लोग काय उत्सर्ग नहीं करते हैं गायक सर तो करना चाहिए